श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय चार श्लोक अध्याय शीर्षक सृष्टि प्रक्रम श्लोक क्रमांक 18 किरातहुणांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभाय वनाखसादयः येन्ये च पापा यदपाशयाशया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। अनुवाद किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में रत रहते हुए जिन परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा काफी लंबा है, पूरा क्लास उसमें हो जाएगा अगर मैं पढ़ूंगा, पर उसमें से एक महत्वपूर्ण जो भाग है जो आज के विषय से संबंधित है, आने वाले गौर पूर्णिमा के लिए भी ये एक तैयारी के लिए, हमारी भावनाओं को तैयारी करने के लिए अनुकूल है, तो वो भाग मैं पढ़ूंगा। भक्ति संप्रदाय के अनुसार, जिसे सामान्यतया वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, ईश साक्षात्कार के विषय में किसी के भी अग्रसर होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैष्णव इतना शक्तिशाली होता है कि वह किरात आदि को भी वैष्णव बना लेता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। भगवद गीता में 9वां अध्याय 32वां श्लोक माम हि पार्थ विपाश्रित्य एपिस्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम्। भगवान ने कहा है कि भगवत भक्त होने में कोई प्रतिबंध नहीं है, यहां तक कि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्तियों अथवा स्त्रियों शूद्रों तथा वैश्यों पर भी। और भगवत भक्त होने पर प्रत्येक व्यक्ति भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। इसके लिए एकमात्र योग्यता है यह है कि ऐसे भगवत भक्त की शरण लेनी चाहिए जिसे कृष्ण के दिव्य विज्ञान भगवत गीता तथा भागवत का सम्यक ज्ञान हो। विश्व में किसी भी भाग का व्यक्ति जो कृष्ण विज्ञान से अवगत है शुद्ध भक्त बन सकता है, और सामान्य लोगों का गुरु बनकर उन्हें हृदयों को शुद्ध करके उनका उद्धार कर सकता है। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, शुद्ध वैष्णव के संपर्क से वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। अतएव कोई वैष्णव विश्व के किसी भी भाग से जाति पांति का विचार किए बिना शिष्य बन सकता है, और विधि विधानों द्वारा उसे शुद्ध वैष्णव का पद दिला सकता है, जो ब्राह्मण संस्कृति से भी परे है। वर्णाश्रम धर्म की सत्ता अब इस प्रणाली के तथाकथित अनुयायियों में भी नहीं रह गई है, न ही वर्तमान सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक उथल पुथल के संदर्भ में वर्णाश्रम धर्म की पुनःस्थापना कर पाना संभव है। किसी भी देश के किसी विशेष रीति रिवाज का ध्यान रखे बिना किसी को वैष्णव संप्रदाय में आध्यात्मिक दृष्टि से स्वीकार किया जा सकता है, और इस दिव्य विधि में कोई बाधा नहीं है। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश से श्रीमद् भागवत या भगवद गीता संप्रदाय के सारे विश्व में प्रचार किया जा सकता है, और जो इस दिव्य संप्रदाय को स्वीकार करने के इच्छुक हों उनका उद्धार हो सकता है। भक्तों के इस प्रकार के आंदोलन को ऐसे सारे लोग स्वीकार करेंगे जो विवेकपूर्ण तथा जिज्ञासु है और किसी देश की रीति रिवाज के प्रति द्वेष नहीं रखते। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जन्म अधिकार के आधार पर स्वीकार नहीं करता, जिस तरह की वह मंदिर में स्थित भगवान के श्री विग्रह को भी कभी मूर्ति नहीं मानता। इस संबंध में सारे संशयों को दूर करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने सर्वशक्तिमान के आशीर्वाद की कामना की है। प्रभु विष्णुवे नमः। जिस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान मंदिर में पूजनीय अपने विग्रह के रूप में अर्चन के भक्तिमय कार्यकलापों के अंतर्गत अपने भक्त की तुच्छ सेवाएं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जब शुद्ध वैष्णव भगवान की सेवा में अपने को अर्पित कर देता है और योग्य वैष्णव द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है तो उसका शरीर तुरंत ही दिव्य बन जाता है। इस प्रसंग में वैष्णव नियम का आदेश है, अर्च्य विष्णव शिलाधीर गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि ही श्री विष्णोर नामनी शब्द सामान्य बुद्धि ही। मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में पूजित भगवान के श्री विग्रह को न तो मूर्ति समझे, न वैद्य गुरु को सामान्य पुरुष समझे, न ही शुद्ध वैष्णव को किसी जाति के संबंधित माने। पद्म पुराण। निष्कर्ष यह निकला कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान किसी भी परिस्थिति में विश्व के किसी भी व्यक्ति को चाहे स्वयं या गुरु रूप में अपनी प्रामाणिक अभिव्यक्ति द्वारा स्वीकार करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त अन्य जातियों का अनेक भक्तों को स्वीकार किया और हम सबों को शिक्षा देने के लिए यह घोषित किया कि वे स्वयं किसी जाति या वर्ण के नहीं हैं, अपितु वे वृंदावन की गोपियों के पालनकर्ता भगवान कृष्ण के दासों के दास हैं। यही आत्म साक्षात्कार की विधि है। हरे कृष्ण। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में रत रहते हुए जिन परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। परीक्षित महाराज ने शिला सुखदेव गोस्वामी से इस पूरे भौतिक जगत की सृष्टि के बारे में प्रश्न पूछा और उसके उत्तर देने से पहले सुखदेव गोस्वामी भगवान की स्तुति कर रहे हैं ताकि वो उस प्रश्न को सही तरह से उत्तर दे। क्योंकि हर एक भक्त शुद्ध भक्त एक भगवान के प्रतिनिधि के रूप में पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर होकर उनके आदेशानुसार एक निमित्त बनकर उनकी इच्छा को इस संसार में उसका पालन हो या उनकी इच्छा को पूर्ण करे, ये इच्छा रखता है। अपनी इच्छा को त्याग कर स्वतंत्र इच्छा, इच्छा जो है वो आत्मा का स्वरूप है। इच्छा करना सच्चित आनंद ये स्वरूप है, चित यानी ज्ञान। इच्छा करने की शक्ति जो है ये हर एक जीव में है, ये स्वाभाविक है। उसे नष्ट नहीं कर सकते, उसे खत्म नहीं कर सकते। सिर्फ उस इच्छा को भगवान की इच्छा से एक करना, और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं हमेशा। हम जब कभी प्रवचन करते हैं तो ये सारे जो हम प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, एक कोई रीति नहीं है, एक कोई रिचुअल नहीं है, बस रिवाज के रूप में एक करना है इसीलिए करते हैं। ऐसा नहीं लोगों को पता लगे अभी प्रवचन शुरू होने वाला है, अभी ये मंगलाचरण कर रहा है इसका मतलब शुरू होने वाला है, ऐसा नहीं। बल्कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है कि हम भगवान की जो इच्छा है, भगवान के जो शब्द हैं, उनको सही तरह से, उसका जो मर्म है उसको सही तरह से प्रस्तुत करें। इसीलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। और इस प्रार्थना में, इस खास श्लोक में, बहुत सारे प्रायशः पूर्ण अध्याय जो है प्रार्थना ही है, एक पूरा अध्याय प्रायशः, और इस श्लोक में खास कह रहे हैं, मैं उस भगवान शक्तिशाली प्रभविष्णवे नमः, प्रभविष्णवे शक्तिशाली भगवान की मैं प्रणाम करता हूं। क्या उनकी शक्ति है, उनकी शक्ति क्या है कि कितना भी एक अधोगति में गया हुआ जीव क्यों ना हो, कितना भी पतित जीव क्यों ना हो, अपने अपने कर्मों से, बुरे कर्मों के अनुसार, पाप योनयः, पाप योनि मतलब क्या, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गणिहस्तिनी शुनिचैव शपाके च पंडिता समदर्शन। गीता में भगवान कहते हैं कि पंडिता जो ज्ञानी व्यक्ति है वो समझता है कि वही जीव है जो 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। भगवान गीता में 16वें अध्याय में कहते हैं कौन वो अधोगति, कौन वो नीच पाप योनि में जाता है। भगवान कहते हैं मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, तान अहम दुषत क्रूरान संसारेशु नराधमान क्षिपामी अजस्रम अशुभाम आसुरी यो एव योनिषु मूढ़ा जन्मनि। जो अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, जैसे हम देखते हैं इन संसार में भी हर एक व्यक्ति शहर में स्वेच्छा से काम कर कार्य कर सकता है, पर जब एक व्यक्ति नियम को अपने हाथ में लेकर दूसरों को तकलीफ देता है तब तो उसे सरकार एक जेल में डालती है। जेल में डालने का मतलब क्या, जेल में डालने का मतलब उसका जो स्वतंत्र है उसको सीमित कर देना, कम कर देना, चार दीवार के अंदर बैठा देते, बोले तुम ये जितना हल्ला करना इधर करो, दूसरों को उसका तुम्हारा तुमके तुम्हारे द्वारा तकलीफ नहीं होना है कि नहीं। बच्चे भी बहुत शरारती करते हैं तो छोटे कमरे में बांध के, यशोदा माई ने बांध दिया उसको एक जगह, बांध दिया उखल में। क्यों बांध दिया, वो जितना भी हल्ला नहीं तो सब तोड़ फोड़ करता रहता है, तू सबको तकलीफ देता है, बांध देंगे तो वहीं रहेगा सीमित, तुम्हारा प्रभाव जो है सीमित हो जाएगा, ज्यादा लोगों पे उसका बुरा असर नहीं पड़ेगा, प्रभाव को कम कर देना। इसी तरह से जब जीव अपने भगवान के एक अंश होने के कारण, भगवान जो स्वराट है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो अंश होने के कारण उसके अंदर भी जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग करे तो दूसरी बात, उसके दुरुपयोग द्वारा दूसरों को भी अगर तकलीफ हो रहा है तो एक कर्म के अनुसार उसे एक ऐसी योनि प्राप्त होती है जहां वो उसका प्रभाव जो है बुरा प्रभाव लोगों पर नहीं डाल सके।
कीट योनि, ऐसा एकदम
गंदे नाली में कीड़ा बन गया, क्या करेगा ज्यादा ज्यादा, पहले ही नाली गंदा है, उसके ज्यादा गंदा नहीं कर सकता हूं, कहां से कहां अधोगति चले जाती। तो इसी तरह से अपने अपने कर्मों के अनुसार उसके बुरा उपयोग या दुरुपयोग के अनुसार एक पाप योनि में जाला जाता है, जिसमें उसका प्रभाव ज्यादा ना हो। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भीर एधमान मद पुमान, कुंती महारानी की जो प्रार्थना है उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, उच्च योनि में जन्म लेना, जन्म बहुत ऐश्वर्यशाली होना, बहुत पढ़ा लिखा होना और शारीरिक सुंदरता होना, अगर किसी में है इसका मतलब पिछले जन्म में उसने बहुत पुण्य काम किया है, ये पुण्यों का फल है, और उसका विरुद्ध हो इसका मतलब वो पुण्य नहीं है और इसीलिए, या पाप योनि के कारण वो उस स्थिति को प्राप्त किया है। ये पूरी समस्या आज पूरे विश्व भर में जो है निर्धन लोगों का नहीं है, कम बुद्धि वालों का नहीं है, सबसे ज्यादा पैसे वाले और सबसे ज्यादा बुद्धि वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट उन लोगों का ही बनाया हुआ है समस्या, बड़े बड़े समस्या। रावण पुलत्स मुनि का बेटा, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण और क्या शक्ति, सारे वेदों को जानने वाला, हनुमान जी भी जब देखते हैं उसको, जब इंद्रजीत उसको बांध के, हनुमान जी को बांध के ले जाता है और ब्रह्म वो अस्त्र से बंधे हुए हनुमान जी जाते हैं, पिछले रात देखे रहते हैं उसको अंतपुर में सोया हुआ, खराटे मारते रहते दारू पी के पूरा, और उसमें देखते हैं वज्र का वो वज्र का प्रहार का चिन्ह है, ये है, फिर जब देखते हैं हनुमान जी देखते हैं सुबह उसको आज सिंहासन पर बैठा हुआ है, बोलते वाह क्या सुंदरता, क्या तेज, अगर ये भक्त होता, अगर तो बोले ये इंद्र के मतलब तुलना में आ जाता, ये थोड़ी अगर बुद्धि ठीक होती इसका सॉफ्टवेयर थोड़ा वायरस नहीं गया होता, काम क्रोध का वायरस नहीं होता इसके अंदर, कितना अच्छा होता। हाँ पुलत्स मुनि का तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भीर एदमान, ये इसका सदुपयोग भी हो सकता है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, और जब दुरुपयोग होता है तो वो पाप योनि में जाते हैं। पर भले कोई भी किसी भी योनि में, 84 लाख योनियों के कोई भी योनि में क्यों ना हो, जीवात्मा वही भगवान का अंश है, उतना ही वो सच्चिदानंद, उतना ही पवित्र है, उतना ही शुद्ध है, भले तीन गुणों का जो शरीर है, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण, आवरण ज्यादा है, तमोगुण यानी ज्यादा आवरण, रजोगुण यानी थोड़ा कम, जैसा एक एक हाथ को आप सर्जन लोग ग्लव्स पहनते ना, ग्लव्स उसमें ग्लव्स में डाली, उसमें सुई और धागा दे तो उसको डाल सकते, और वही हाथ में अगर विकेट कीपर के ग्लव्स में डाल दीजिए, इतने बड़े बड़े अंगूठे होते हैं उसका, और उसके हाथ में सुई धागा दीजिए, वो डाल नहीं पाएगा, सुई को पकड़ नहीं पाएगा, सबसे पहले उठा ही नहीं पाएगा, इतने मोटे मोटे अंगूठे होते हैं, वो कैसे करेगा। और उसी को बॉक्सिंग ग्लव्स के अंदर डाल दो, उसमें उंगली नहीं होता, एक ऐसा बस गोल होता है उसके अंदर घुसाने का, और स्थूल काम करने के लिए वो शरीर सही है, वो आत्मा की तुलना हाथ से की जा सकती है, और ये जो अलग अलग ग्लव्स हैं ये शरीर की तुलना, और जब वो हाथ बॉक्सिंग ग्लव्स के अंदर है उसको सुई धागा डालने नहीं बोलो, उसको घूंसा मारने बोलो किसी के नाक के ऊपर, बस वही काम कर सकता है, स्थूल कार्य। तो इस तरह से पेड़ योनि, कृमि कीटाणु की योनि, इस तरह से उसके बाद धीरे 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 और ऊंचा मतलब पशु योनि, उसके बाद मनुष्य, मनुष्य में भी अलग 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 स्तर, और ऐसे 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 चढ़ते 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 शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण, उससे परे वैष्णव। वैष्णव जो है एक आत्मा जब अपनी संपूर्ण प्रफुल्लित अवस्था में आता है, आत्मा की चेतना जो है एक फूल के समान है। फूल जब खिलने के लिए रहता है तो एक संकुचित, संकुचित नहीं आच्छादित हरा रंग का ऐसा एक, कब आप देखेंगे गुलाब खिलने से पहले ऐसा हरा रंग का एक कली कली आता है, थोड़ा ऐसा मोटा सा, उसके अंदर गुलाब है पर गुलाब दिखता नहीं है, गुलाबी रंग दिखता नहीं, लाल नहीं दिखता, सिर्फ हरा दिखता है, आच्छादित है वो फूल, फूल है, उसके अंदर फूल बनने की शक्ति है पर अभी वो कली के रूप में, कली भी नहीं, पूरा आच्छादित है। उसके बाद थोड़ा फूटता है वो हरा रंग का, फूट के उसमें से थोड़ा लाल रंग नजर आता है, गुलाबी रंग नजर आता है, यानी संकुचित। उसके बाद और थोड़ा विकास होता है उसका, और ऐसे पंखुड़िया थोड़ा 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 पंखुड़ी, मतलब ऐसा ऐसा आता है बस, छोटा छोटा पंखुड़िया दिखते हैं, है पर अभी तक खिला नहीं। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा विकसित, और उसके बाद प्रफुल्लित एकदम। इस तरह से चेतना भी जैसे 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 जैसे, और प्रफुल्लित चेतना, शुद्ध चेतना, वो है कृष्ण भावना 100%। उस समय ये आवरण का असर नहीं पड़ता। तो केवल भगवान प्रभविष्णवे नमः, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में वो शक्ति है कि वो किसी भी योनि व्यक्ति को एक उच्च स्तर के पर ला सकते हैं। न केवल भगवान, यद अपाश्रय आश्रिता, जो भगवान के आश्रय लिए हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त हैं, उन भक्तों में भी उतनी शक्ति है कि वो भी वो चेतना जो पूर्ण रूप से पाप योनि के एक पाप के कारण अधोगति को प्राप्त किया है, उस व्यक्ति को भी शुद्ध प्रफुल्लित अवस्था यानी शुद्ध कृष्ण भक्ति के स्तर पर उसका जो प्रभाव है उस स्तर पर लाने की शक्ति है। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। सिंधाय गौरचंद्र की जाए। तो ये शक्ति है भगवान की, और ये शक्ति है उनके भक्तों की। प्रभु विष्णवे नमः, यद अपाश्रयाश्रिता। और ये यही चीज, और कलयुग में कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में ये वर्णाश्रम लागू है ही नहीं, प्रायशः थोड़ा बहुत इधर उधर दिखता है, थोड़ा बहुत छोटा छोटा बड़ा थोड़ा, क्यों कलौ शूद्र संभवा। कलयुग में किसको संस्कार हुआ है, जन्म में संस्कार कैसा हुआ है, किसको गर्भाधान संस्कार, ये संस्कार वो संस्कार। हमारे एक रिश्तेदार हैं, क्या हमारा खुद के घर में भी मैंने देखा, हमारे भाइयों को उपनयन संस्कार हुआ ही नहीं, कल शादी होने वाला था, पिताजी ने बोला चलो उपनयन संस्कार आज करा दो, कल शादी करा देंगे, क्योंकि शादी के दौरान कुछ संस्कार करना पड़ता, उस समय अगर धागा ही नहीं तो कैसा होगा। उसके पहले दिन बैठ के उपनयन संस्कार, अगले दिन विवाह संस्कार। और हमारे दूसरे एक रिश्तेदार को वो बोला मैं पूरे विश्व भर में भ्रमण करना चाहता हूं, तो बोला जाने से पहले एक छोटा सा संस्कार करके मेरा कर्तव्य मैं कर दूंगा। पिताजी ने उसको क्या बोला, उपनयन संस्कार कराया, अगले दिन स्नान करने गया, फिर साइकिल पे चला गया। जाने के बाद पिताजी दरवाजा खोल के देखे, वो स्नान करते वक्त उसने लटका दिया था किले पे, भूल ही गया वो, क्योंकि पहला दिन था, उसको लगा कि सब स्नान करते वक्त साबुन खराब हो जाएगा ये उपनय उपवीत, तो उसने वो टंग दिया, ऐसे भूल के चला गया। पिताजी बोले अरे देखिए इतना सब संस्कार किया वो चला गया। तो थोड़ा बहुत हम अभ्यास कर सकते हैं, और प्रायशः कलयुग की स्थिति ऐसी है, कुछ भी शुद्ध नहीं है, वातावरण शुद्ध है अंदर से बाहर से, न खाद्य पदार्थ शुद्ध है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। शुद्ध रखना बहुत मुश्किल है अपने चेतना को, शरीर को ही शुद्ध रखना। पानी नहीं है कई जगह स्नान करने के लिए, धीरे धीरे और भी गति बुरी होने वाली है, कलयुग का वर्णन है। इसीलिए कलयुग के युगावतार श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं, उन्होंने एक ऐसा तरीका दिया है, कोई भी पूरे विश्व के किसी कोने में उन्होंने जो तरीका दिया है, वो तरीका ऐसा है, नीच से नीच योनि से भी अगर उस तरीके को स्वीकार करे, उनके दिए हुए युग धर्म को स्वीकार करे, उसमें उतनी शक्ति है, शक्ति उस युग धर्म की है कि वो उस व्यक्ति को किसी भी स्तर में क्यों ना हो उसको सर्वोच्च स्तर पर ला सकता है। इसीलिए जानबूझकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने दाबीर खास और साकार मल्लिक जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे पर जिनको ब्राह्मण समाज ने बहिष्कार कर दिया था क्योंकि वो एक यवन राजा के सेवा में लगे हुए थे, उसमें कोई सेवा भी करता था यवन राजा का, तो बोले निकाल, बहिष्कार कर दिया उस समाज से। उनको सर्वोच्च गोस्वामी का पद दिलाया। गोस्वामी मतलब क्या? पृथ्वीम स शिष्यात्, जगत गुरु पूरे पृथ्वी को शिष्य बनाने योग्य। हरिदास ठाकुर जो यवन परिवार में जन्म लिए थे उनको नामाचार्य युग धर्म के आचार्य बनाया। हर रोज पूरे विश्व में कोई भी हमारे सेंटर में मंगल आरती के बाद जब हम लोग प्रणति गाते हैं बोलते हैं नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। ये यही तत्व का दर्शित करता है कि ये शक्ति है महाप्रभु की। और ये जो है ये कोई नई बात नहीं है जो महाप्रभु ने दिया, ये वैदिक संस्कृति में है, ये वैदिक संस्कृति में हमेशा रहा है। दुर्भाग्यवश बार बार धर्मस्य ग्लानि, जब ये सनातन धर्म की ग्लानि होते जाती है तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग उद्देश्य से कुछ चीजों को लेकर असली तत्व सनातन धर्म को दबाकर कुछ मानसिक स्तर पर अपने समझ जो है वो प्रचार कर देते हैं। हम बार बार देखते हैं, हरिदास ठाकुर के समय में भी तथागत कई ब्राह्मणों ने निंदा की हरिदास ठाकुर, ऐसे कैसे तुम जोर से नहीं हरिनाम ले सकते, मन में लेना चाहिए। हमेशा वो ऑब्जेक्शन हमेशा रहा है, बाधा रही है, पर हम देखते हैं कि शुद्ध भक्त इन चीजों की परवाह न करते हुए वो प्रचार करते हैं। त्रेता युग में भी हम देखते हैं, प्रभु रामचंद्र के समय में, भागवत में देखते हैं, कितने सारे उदाहरण है। मृगारी जो है वो एक ऐसे मतलब जो जंगली लोग, मैं देखा है उन लोग, बाप रे, ऐसे किसी को भी कुछ भी, सांप को भी ऐसे पकड़ लेते और ऐसे छील के वो खा लेते हो। मुर्गी उर्गी तो कुछ नहीं उनके लिए, ऐसा पकड़ के आराम से, जैसे कल मदन गोपाल रूप बता रहे थे ना, बातचीत करते करते जैसा हम लोग काकड़ी का छिलका निकालते हैं ऐसे निकालते हैं वो लोग, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। हमको देख के आश्चर्य होता है, भाई कैसे करते हैं, बड़े बड़े पशु को भी आधा मार में। मृगारी ऐसे मारता था, आधा मार के और पूरा नहीं मारता था, आधा मार के छोड़ता था, वो छटपटाते देखकर उसको आनंद मिलता था। और जब नारद मुनि की कृपा हुई उस मृगारी पर, कुछ ही क्षण में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में इतना परिवर्तन हो गया उसका हृदय, इतना परिवर्तन कि चींटी को भी नहीं मारता था, जो हम वैष्णव तथाकथित वैष्णव बिंदास मार देते। कभी कभी हम देखते हैं वॉश बेसिन में पानी डालने के बाद बहुत सारी चींटी आ गई, खोल के हरे कृष्ण जान क्या करेंगे अभी, सब चींटी को थोड़ी हटा सकते। पर ये मृगारी चींटी को, अरे चींटी को भी हटाया, चींटी भी नहीं, कहां बड़े बड़े पशुओं को आधा मारकर आनंद लेने वाला और कहां थोड़े ही समय में। और ये जो परिवर्तन है, जनरली स्पीकिंग हजारों जन्म लग जाते हैं। आप कभी, हम लोग कभी कभी देखते हैं किसी को हम प्रचार करने का प्रयास करते हैं, उसकी जो स्तर है, उसका जो कंसेप्शन है, उसका जो समझ है, उसमें से एक इंच बढ़ने के लिए पूरा जन्म हो जाता है। मरते दम भी वो बोलता है क्या कृष्णा कृष्णा कर रहे हो, बढ़ समझता नहीं है, ऐसे ही शरीर छोड़ देते हो गाली देते हुए। हमको लगता है इतनी सरल सी बात कैसा नहीं समझता, समझ में नहीं आएगा जब तक तो कृपा नहीं होगी। एक इंच ऊपर बढ़ने के लिए कई जन्म लग जाते कभी कभी। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत दुर्लभ है ये जो मैंने कहा है प्रफुल्लित होना, आच्छादित अवस्था से संकुचित से पूरा रूप से प्रफुल्लित होना, कई करोड़ जन्म लग जाते हैं। पर जैसे कभी कभी हम लोग फिल्म में फास्ट फॉरवर्ड करते, मालूम एक पिक्चर को जो एक घंटे का है उसको एक मिनट में फास्ट करो, ऐसा 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 हीरो है, ऐसा भगवान एक शॉर्टकट दे दिए महाप्रभु ने। महाप्रभु ने एक ऐसा बटन दिया है, दबा दो तो हमारा जीवन फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, जो करोड़ों जन्मों में होने वाला कुछ सालों में, या बहुत ज्यादा दबाए उस फास्ट फॉरवर्ड के बटन को, ज्यादा कृपा स्वीकार करे, तीव्रता से प्रार्थना करे तो शायद एक महीने में भी हो सकता है। कई लोगों को एक क्षण के अंदर हुआ है, जगह ही मदाए, सब सुपर फास्ट फॉरवर्ड उनके जीवन में जो दबाया, यमराज भी बेहोश होकर गिर गए। मैं हमेशा देखता हूं इन लोगों को सुधारने के लिए मेरा जीवन चला जाता है, सुधरते नहीं, मार खाने के बाद भी फिरते हंसते हंसते बाहर जाते, वही काम करते ये लोग। ये जगह मदाई को शुद्ध भक्त बना दिया, इनका एक संप्रदाय बन गया अभी, वैष्णव संप्रदाय। ये महाप्रभु की कृपा है। तो प्रभु रामचंद्र के जीवन में भी हम देखते हैं जटायु, वो तो मृगारी तो कम से कम मनुष्य था, वाल्मीकि, नारद मुनि की शक्ति देखिए आप, या हरिदास ठाकुर, या विभीषण, असुरयोनि, वो तो छोड़ो, गजेंद्र, पशुयोनि, हनुमान जी एक रूप से देखा जाए तो वो किम पुरुष, और भी स्तर पर, कम से कम स्तर पर, जटायु पक्षी, किष्किंधा क्षेत्र हम लोग गए थे, शबरी का भी शबर जाति कौन है, नारद पुराण में वर्णन है, क्षत्रिय स्त्री और वैश्य पुरुष से जो जन्म लेते हैं उनको कहते हैं शबर, प्रतिलोम विवाह, उसको कहते हैं शबर। और शबर का मेन काम होता है फल बेचना और मधु, क्या बोलते हैं, मद, जंगल से निकालना और बेचना, वो शबर है, शबर जाति। तो शबरी उस कुल में उत्पन्न हुई थी, पर क्योंकि उसने मतंग ऋषि का आश्रय लिया था, उनकी खास कृपा हुई थी, मतंग ऋषि की खास कृपा हुई थी शबरी पर। शबरी जब प्रभु रामचंद्र आते हैं तो कहती है वो शबरी, एक्चुअली कबंध कहता है, कबंध ही कहता है जाते वक्त, अरण्य कांड में जब प्रभु रामचंद्र जा रहे हैं सीता को ढूंढते, सीता माई को ढूंढते हुए, तो उस कबंध कहता है कि सामने जाइए आप शबरी मिलेगी, ये शबरी बड़ी तपस्वी है, ये सिद्ध व्यक्ति है, समसित व्रता, व्रत पालन करने वाली, तीव्र व्रत को पालन करने वाली, आपकी राह देख रही है प्रभु, मतंग ऋषि की शिष्या है वो, और वो आपकी राह देख रही है, पंपा सरोवर के पास पंप क्षेत्र में आपको मिलेगी, जाइए आप। तो वाली को मिलने से, सुग्रीव को मिलने से पहले शबरी के पास जाते राम और लक्ष्मण, और शबरी के यहां जाते हैं, और शबरी बूढ़ी हो गई रहती, बहुत बूढ़ी, कांपती रहती है वो, इतनी बूढ़ी हो गई रहती है, सर उसका हिलता रहता है ऐसा, और वो बड़े हर रोज कई साल पहले मतंग ऋषि अपने शिष्यों के साथ जब वापस भगवत धाम जाते हैं तो शबरी भी तैयार हो जाती है, आग लगा के छलांग मारती है, छलांग मारने के लिए। मतंग ऋषि उन्हें रोकते हैं, बोले तुम्हें राह देखना पड़ेगा, अब उस स्थिति में नहीं हो तुम अभी सेवा करो। हम लोग यहां, हम अभी शरीर छोड़ के जा रहे हैं, प्रभु रामचंद्र यहां बहुत जल्दी आएंगे। जल्दी जल्दी मतलब कितना जल्दी वो नहीं बोले, बोले प्रभु रामचंद्र यहां आएंगे, उनकी तुम सेवा करो, उनकी कृपा ग्रहण करके बाद में आ जाना, तब तक उनका राह देखो। और कई सालों तक शबरी जो है गुरु की आज्ञा, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरियो आइक्या हार ना करी हो मने आशा, उसकी इच्छा नहीं रहती जीने की। उनके पीछे गुरु के साथ वो भी शरीर छोड़ना चाहती है, पर देन उनका आज्ञा रहता है, वो आज्ञा बांध के रखता है। हर रोज बड़े उत्साह के साथ फूलों की माला बनाकर सारे फल एकत्रित कर रखती है, आ जाएंगे प्रभु रामचंद्र, आ जाएंगे। उस दिन नहीं आए, फिर तैयार करती है। क्या उत्साह, उत्साह निश्चया धैर्य, उसे निश्चय पूरा विश्वास रहता है अपने गुरु के वचन पर, इसीलिए अपना उत्साह नहीं खोती है। उत्साह का सार है विश्वास, जिसमें विश्वास नहीं है थोड़े समय का उत्साह रहता है, वो उत्साह रहता नहीं, टिकता नहीं है। पर जिसको पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं सही मार्ग पे हूं, यही सही तत्व है, कितना भी समय लगे धैर्यात धीरज, वो व्यक्ति खो बैठता है जिसके अंदर विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा मूल है जो उत्साह का भी कारण है, और धैर्य धीरज भी रखना, बड़े धीरज के साथ पर उतना ही उत्साह के साथ हर रोज। कई साल गुजर गए पर उसे नहीं लगता, इतना साल किया, अभी एक काम करते फूल माला फूल रखे रहते, जब आएंगे तब माला बनाएंगे, कितना बना के हर रोज रखेंगे, तब एकत्रित करेंगे फल को। हर रोज क्या एकत्रित करके रखना, आते नहीं कभी, फल तो ऐसा वेस्ट होता है हर रोज, नहीं कभी भी आ सकते हैं, क्या मालूम कब आ जाएंगे। हर रोज तैयारी, और एक दिन आ जाते हैं प्रभु रामचंद्र एकाएक। और बड़े सुंदर से वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, उन्हें प्रणाम करती है और बड़े सुंदर शब्दों में उन्हें आमंत्रित करती है, उन्हें बुलाती है मतंग ऋषि के आश्रम में, अपनी छोटी सी कुटी उसके गुफा में गए थे हम लोग, हम्पी में है वो हॉस्पिटल के बगल में, कैसे रहती थी पता नहीं, हमारे भक्त लोग अंदर गए बोले जल्दी बाहर जाएंगे 40-50 लोग अंदर बैठे होते, अच्छा है, गर्मी के दिन ठंडा होता है, ठंडी के दिन गर्मी होती है, पर थोड़ा अंधेरा अंधेरा है, पूरे जिंदगी उसने वहां निकाला। तो बड़े, और प्रभु रामचंद्र वाल्मीकि मुनि कहते हैं अलग अलग शब्दों से उनको संबोधित करते शबरी को, और कहते हे चारुभाषिणी, अब क्या कही हमें नहीं मालूम, वाल्मीकि मुनि ने बताया नहीं, संक्षिप्त रूप में बता दिया इस कथा को, पर प्रभु रामचंद्र कहते हैं चारुभाषिणी, यानी बहुत सुंदर शब्दों से, बोलने का भी एक कला है, कुछ लोगों को बोलने ही नहीं आता, बड़बड़ क्या बोल गए समझ में नहीं, फिर से बोलो, तीन बार बोलने के बाद भी समझता नहीं, बोलने की भी एक कला है। और कुछ लोग बोलते हैं तो आंख हिलता है, नाक हिलता है, कान हिलता है, सब हिलता है। हनुमान जी के अंदर भी वो कला थी, कितने अंदर से बड़े शांत स्वभाव से बोल रहे, बोलने की एक कला है, बोल के व्यक्ति को जीता जा सकता है, हृदय जीता जा सकता है, शत्रु के हृदय को भी जीता जा सकता है अगर बोलने की कला हो तो। एक सुंदर श्लोक है, को ही भार समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिनाम, को विदेश सुविद्यानाम को परह प्रियवादिनाम। को ही भार समर्थानाम, जो दक्ष व्यक्ति है, बड़ा एक्सपर्ट आदमी है, उसके लिए कोई चीज बोझा नहीं है, कोई भी काम दे दो कर देगा, क्यों एक्सपर्ट आदमी हो, उसके लिए कोई को ही भार समर्थाना, जो समर्थ व्यक्ति है उसके लिए कोई बड़ा भी बड़ा से एक बड़ा कार्य दे दो वो बोझा नहीं समझता हो। किम दूरम व्यवसायी नाम, जो व्यवसायी आदमी है बिजनेसमैन है उसको बोलेगा तेरे को करोड़ रुपया मिल सकता है पर ये बिजनेस के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। अरे कहां जाना है बोल, पृथ्वी चांद तक जाके आ जाऊंगा पैसा मिलेगा तो। किम दूरम व्यवसायी नाम, जो सचमुच में बिजनेस करना चाहता है यहां से अमेरिका जाएगा पांच पैसे की फायदा के लिए। किम दूरम व्यवसायी नाम को विदेश सुविद्यानाम, जो बहुत अच्छी तरह से विद्या प्राप्त किया है उसके लिए कोई देश विदेश नहीं है क्योंकि सब जगह उसकी सम्मान होगी क्योंकि ज्ञान है उसके पास। दूसरे जगह सम्मान नहीं होगी, अगर व्यवसायी जाएगा अगर पैसा नहीं है उसके पास तो कोई सम्मान नहीं देगा, पर जिसके पास विद्या है उसको हर जगह सम्मान मिलेगा, कोई भी कहीं भी जाए वो, क्योंकि है उसके पास वो विद्या। को विदेश सुविद्या नाम को परह प्रियवादी नाम, जो जो बहुत अच्छा बोलने वाला है उसके लिए कौन पर है, सब अपने लोग हैं। कभी कभी हमको ट्रेन में लोग मिलते हैं, आपने देखा होगा कभी पांच मिनट के अंदर ऐसा दोस्ती कर लेते होते, ये तो अपना प्राण से भी प्यारा, परिवार का सदस्य से भी ज्यादा प्रिय हो जाता है, इतना जल्दी हृदय को जीत लेते हैं बोलने के द्वारा, वो कला है बोलने की। तो चारुभाषिणी, ऑफ कोर्स कुछ पॉलिटिशियंस भी होते बोलने में बहुत ही माहिर होते हैं पर उतना ही नहीं, हृदय से वो बड़े भक्ति भाव से उसके जो वचन थे बहुत ही मधुर थे। तो इस तरह से स्वागत करती है और तत्पश्चात अर्घ्य अच्छे तरह से पद्य इत्यादि, क्योंकि मतंग ऋषि की शिष्या थी वो, उसे मालूम है किस तरह से महात्माओं को ऐसे, और उसे मालूम रहता है कि ये साक्षात भगवान है, वो कहती है पहचान लेती है, गुरु की कृपा मिलेगी, गुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा से एक सदगुरु मिलते हैं, भगवान की कृपा से सदगुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं। यहां देखते हैं हम मतंग ऋषि बहुत प्रसन्न हुए थे उनकी सेवा भाव से और इसीलिए कहते हैं प्रभु रामचंद्र से तुम्हारा मुलाकात होगा, वो समझ जाती है प्रभु रामचंद्र ही, अच्छी तरह से सेवा करती है, उनको प्रसन्न करती है, फल फूल अर्पण करती है, तत्पश्चात पूरे आश्रम को भ्रमण कराती है और उसके बाद मतंग ऋषि के आश्रम को दिखाती है और वो पंपा सरोवर में ले जाती है उन्हें और कहते हैं कि हमारे गुरु इतने वृद्ध हो गए थे कि उनको उठने की भी ताकत नहीं थी, तब उन्होंने प्रार्थना की सातों समुद्रों का पानी जो है इस पंपा सरोवर में आ जाए और उसमें वो स्नान किया करते थे और उस जल को उपयोग किया करते थे भगवान की सेवा के लिए। और उनका चढ़ाया हुआ फूल का माला ये देखिए आज भी वो सूखा नहीं है, कई सालों के पहले चढ़ाया हुआ उनके हाथों से माला आज भी सूखा नहीं है, उनका मृगछाल जिसपे उन्होंने स्नान किया था अभी तक सूखा भी नहीं है, इतना फ्रेश इतना ताजा है। और इस तरह से प्रभु रामचंद्र को अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार अच्छे तरह से सत्कार करने के पश्चात फिर प्रभु रामचंद्र के सामने आकर राम और लक्ष्मण के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरे गुरु के वचन के अनुसार मैंने आपका सत्कार किया, मेरा कार्य अभी पूर्ण हुआ, जिसके लिए मैं राह देख रही थी कार्य पूर्ण हुआ, अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मैं मेरे गुरु के चरणों की सेवा में लग जाऊं। चिता तैयार करती है और प्रभु रामचंद्र के चरण में पढ़कर उनकी आज्ञा उनका सम्मति स्वीकार करके उनके आशीर्वाद लेकर छलांग मार देती है चिता में। ये बड़ा थोड़ा अजीब लगता है, भगवान सामने आए हैं और भगवान से प्रार्थना कर रही है मुझे गुरु की सेवा के लिए जाने के लिए आज्ञा दीजिए। हम गुरु से प्रार्थना करते हैं भगवान दिला दीजिए, और यहां भगवान से मांग रही है मुझे गुरु की सेवा में लगाइए। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से, ये कृतज्ञता का शक्ति है, उन्हें मालूम है। एक प्रामाणिक शिष्य जो पतित अवस्था में, प्रहलाद महाराज भी यही प्रार्थना करते हैं नरसिंह देव से, मैं अंधकूप में गिरा हुआ था, एक गंदी नाली के समान ऐसी परिस्थिति थी मेरी, और मेरे गुरु नारद मुनि ने मुझे उठाकर इस स्तर पर लाया कि आपका दर्शन हो रहा है आज मेरा, ये उनकी कृपा है, मेरी कोई शक्ति नहीं है। इसीलिए प्रभु उनकी सेवा मैं कैसे छोड़ सकता हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उनकी सेवा हमेशा करते रहूं, क्योंकि वो सेवा ही मेरे लिए सब कुछ है, उसके बिना मैं कभी सोचता हूं अगर करते रहेंगे तो शायद अविज्ञा अति परिचय अवज्ञा हो जाएगा, अच्छा है मैं उस सेवा करते रहूं, वो योग्यता दिलाया मुझे। ये गुरु निष्ठा शबरी ने दिखाया, श्रील प्रभुपाद एक रूप से अगर ये श्लोक जो देखेंगे इसको सत्य करके प्रभुपाद जी ने दिखाया। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं हूण यानी, महाभारत में वर्णन है हूण यानी ग्रीक, जर्मनी, रशिया, पुलिंद जर्मनी, अलग अलग पूरे विश्व के अलग अलग भागों का वर्णन है, किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभिर, आभिर यानी सिंध, शुंभ, यवन, टर्की, तुर्क, जो अपने ययाति के पुत्र थे यवन, उसके परिवार के लोग अभी टर्क, मतलब परशुराम के समय वो लोग सब इधर उधर बिखर गए क्षत्रिय, और जितना वैदिक संस्कृति से दूर चले गए उतना वो लोग पतित हो गए, उनका पतन हो गया बाद में वैदिक संस्कृति के दूर जाने से। तो यवन, खस यानी ग्रीक, ये नियच पापा इति, इसके अलावा जितने भी और भी पतित हो, यद अपाश्रयाश्रया, उस व्यक्ति के शरण लेना जिन्होंने पूर्ण रूप से भगवान के शरण लिया है। इसीलिए हम कहते हैं प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में, नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, कृष्ण प्रेष्ठाय, वो भगवान को बहुत ही प्रिय है, क्यों, विष्णु पादाय, पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिए हैं, और क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिए हैं वो किसी को भी आश्रय दे सकते हैं और उसको पतित योनि से उठाकर सर्वोच्च योनि यानी वैष्णव स्तर पर ला सकते हैं, ये उनकी शक्ति है। और प्रभुपाद जी ने एक्चुअली इस श्लोक को करके दिखाया है, जो इस परंपरा में दूसरे कोई नहीं किए थे इतने प्रभावशाली रूप में, इतने मतलब इफेक्टिव तरीके से, बड़े पैमाने पर प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। अभी आप जाएंगे गौर पूर्णिमा के समय, आप अगर मायापुर जाइए, चाइनीज वैष्णव, अफ्रीकन वैष्णव, काले तिलक एकदम साफ दिखता है उनको, चाइनीज वालों को दिखता नहीं हो क्योंकि उनका कलर भी एकदम तिलक कलर, लाल, पीले, काले, हमारे जैसे भूरे, सब प्रकार के वैष्णव मिलेंगे उधर। क्या कमाल किया है प्रभु वैष्णव ये नमः, ये भगवान की शक्ति है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है। भवानंद प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, अभी वो जो बड़ा मंदिर बनने वाला है वो एक एकड़ का हॉल होगा, मंदिर का हॉल, एक एकड़ तो केवल हॉल, 10,000 लोग एक बार कीर्तन कर सकते बैठ के, और उसके बगल में भी और भी हॉल बड़े बड़े, मतलब बड़े बड़े ऐसा दरवाजे होंगे, वो भी देखते ही वो अद्भुत लगता है, वो ऑलरेडी उठ रहा है, ऑलरेडी जमीन के ऊपर उठ गया है, अभी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तैयार हो रहा है। महाप्रभु की जो इच्छा थी, पृथ्वी ते आछे जतो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम, युगावतार हैं इसे हम समझ सकते हैं, और किस तरह से जगत गुरु हैं प्रभुपाद जी वो भी हम समझ सकते हैं, तो इस तत्व को उन्होंने दिखाया। तो भवानंद प्रभु कह रहे थे आई डोंट नो हु आई एम, मैं मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं, कभी मैं सोचता हूं मैं कौन हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, एकदम नहीं, मैं वैश्य हूं, नहीं, मैं शूद्र हूं, नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूं, एकदम नहीं, सफेद कपड़े पहनते हूं, मैं सन्यासी हूं, नहीं, मैं वानप्रस्थ तो हूं नहीं, गृहस्थ तो हूं नहीं, पत्नी नहीं है, तो मैं हूं कौन? मुझे एक ही चीज मालूम है, मैं प्रभुपाद का दास हूं। बोले इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। भगवत धाम में भी जाऊंगा तो मैं देखूंगा, प्रभुपाद नहीं है तो बोलूंगा मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि मुझे भगवान भगवान नहीं मालूम, मुझे प्रभुपाद मालूम है बस, क्योंकि उन्होंने मुझे उठाया। कृतज्ञता कि मुझे मालूम है, नहीं तो मेरी क्या स्थिति होती? अगर वो कृपा नहीं होती, गुरु की कृपा हमारे जीवन में नहीं आती, तो हम क्या होते, कहां होते, क्या हमारी चेतना होती, क्या हमारा कार्य होता, क्या हमारा समझ होता? तो ये जब सोचते हैं तो हमको समझ में आता है, हाँ सही में चैतन्य महाप्रभु की कृपा है और उनके सेनापति भक्त की कृपा है कि एक ऐसा सुनहरा मौका हमारे लिए एक खोल दिया है कलयुग में भी। और इसीलिए ये कृतज्ञता कैसे दिखाना है हमको, कहते हैं प्रभुपाद की जय, अच्छी बात है, जयकार करनी चाहिए, पर उनके शिष्यों ने जिस तरह से दिखाया है, प्रभुपाद जी के शिष्यों को देखिए किस तरह से उन्होंने उस कृतज्ञता को दिखाया है। सबसे पहले जो कृपा दिए उसको पूर्ण रूप से बड़ी गंभीरता से स्वीकार किया, स्वीकार करना सबसे पहले, कृपा दे रहे हैं और सिर्फ जय जयकार करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या फायदा, उसे स्वीकार करना। और स्वीकार करने के बाद उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए यथाशक्ति दूसरों को देना। उन्होंने तपस्या करके हमें दिया है और हमारा भी ये इच्छा होनी चाहिए देना। देना मतलब क्या, आप कहेंगे किस तरह से देना, किसी तरह से, किसी ना किसी तरह से ये दूसरों को पहुंचे। और उस पहुंचने में बहुत बड़ा अलग अलग प्रकार का सेवा होता है। जैसा एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर है, अपने इसमें कर्नाटक में एक था मोदी, मोदी आई कैंप, बहुत फेमस डॉक्टर, उसके अंदर ऐसी कला थी, वो मोती बिंदु है ना, आधे मिनट में वो निकाल देता था और कोई फेल्यूर नहीं उसके, बहुत दक्षता उसके अंदर, हजारों ऑपरेशन कर सकता था पर कर नहीं पाता था, क्यों? क्योंकि पेशेंट को इंटरव्यू करना चाहिए, उसको तैयार करना चाहिए, सुलाना चाहिए, उसके पास अलग सब। तो फिर जब लोगों ने देखा कि बापरे ये तो बहुत अच्छा सर्जन है, उसको एक बोले एक काम करो, आप सिर्फ एक काम करो, सिर्फ ऑपरेशन करते रहो, तैयारी करने का हम लोग लाने का हमलार काम है, हम लोग उस पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव केयर करेंगे, प्री ऑपरेटिव जो भी लेना है, उसको दवाई देने का, वो सब हम करेंगे, पर जो आप कर सकते हो ये जो मोतीबिंदु निकालने का वो कला आपको हम सब तैयार करके देंगे, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का मोतीबिंदु निकाल। तो उन्होंने बड़ा हॉस्पिटल खोला, मोदी आई हॉस्पिटल, और उसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई कंपाउंडर है, कोई ये है, कोई साफ करने वाला है, क्योंकि अगर साफ नहीं रखे, ऑपरेशन हो गया पर अगर वातावरण साफ नहीं हो तो फिर से इन्फेक्शन हो सकता है, ऑपरेशन सक्सेस पर फिर से फेल्योर हो जाएगा, पेशेंट डेड तो नहीं होगा पर फिर से इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जो भी वहां मदद कर रहे हैं वो लोग सब उस व्यक्ति को आंख देने में मदद कर रहे हैं, भले ऐसा डायरेक्टली लगे या ना लगे, कोई वहां साफ कर रहा है, कोई वो सारे के दूसरे कपड़ों को निकाल के धो रहा है, कोई वहां ऑपरेशन थिएटर में कुछ डेटॉल वेटॉल लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, और कोई बाद में दवाई देता है, बाद में उन लोगों को भी देता है, ऐसे ऐसे करने का, ऐसे ऐसे नहीं करने का, कोई केस हिस्ट्री ले रहा है, तुम बाप का नाम क्या, माँ का नाम क्या, ये क्या, वो क्या, सब उसमें मदद कर रहे हैं। इस तरह से प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ खोला है, ये वहां के मेन डॉक्टर हैं, चक्षुदान दिलो ये अज्ञानतिमिरांधस्य अज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन, उन्होंने ये पुस्तक दिया, जो पढ़ेगा उसका आंख खुल जाएगा। पर लोगों को जाके बांटना है पुस्तक पढ़ो भाई आंख खोलने के लिए, हम तो खोल नहीं सकते, ये पुस्तक खोलेगा, सिर्फ पढ़ो तुम, बोलेगा आंख बंद करके ऐसा पढ़ो, बोले अभी जो बंद है ना, खुला हुआ आंख है वो बंद है, वो भले खुला है पर बंद है, क्यों? क्योंकि तुमको पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, समस्या क्या है तू नहीं समझ रहा, यू पढ़ तू समझ में आएगा। पर इसको ठीक है पढ़ तो लेंगे, पढ़ने के बाद अगर मंदिर में आएंगे पर मंदिर का वातावरण अनुकूल नहीं रहा तो फिर से आएगा नहीं वो। तो इसमें सबका अलग अलग सहयोग है, यथाशक्ति अपनी अपनी कला के अनुसार भगवान ने जो हमें बुद्धि दी है, शक्ति दी है, पर अंततः एकमात्र उद्देश्य से कि प्रभुपाद की जो इच्छा है, जो महाप्रभु की इच्छा है, जो श्री कृष्ण की इच्छा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज, वही महाप्रभु ने कहा और वही प्रभुपाद ने दिया है, तो उसको पूर्ण करना। और ये जो सेवा है, एक्चुअली सेवा के द्वारा हम भगवान के अनुभव अनुभूति कर सकते हैं, डायरेक्टली भगवान को हम देख सकते हैं। अब बोलेगे कैसा, आज तक इतना सेवा किया देखा नहीं, देख के करोगे क्या? बोलो, देखने के बाद क्या करो? देखते रहोगे, ऑफकोर्स देखते भी रहेंगे काफी है, पर प्रेम का मतलब सेवा करना, किसी से प्रेम करना मतलब किसी की सेवा करना, और सेवा करने का मतलब उस व्यक्ति को प्रसन्न करना। तो अगर प्रभुपाद से प्रेम करते हैं तो प्रभुपाद की सेवा करनी है, और सेवा करनी है तो उनको प्रसन्न करना है। कैसे प्रसन्न करना है? उन्होंने बताया हमको, हरिनाम लो और हरिनाम दो, सरल सी बात है। और वो देने के लिए बहुत सारा वातावरण करना पड़ता है, जिंदगी भर लेने के लिए, उसको एक दिन दिला सकते हैं पर उस व्यक्ति को अगर जिंदगी भर लेना है, जीवन भर, तो एक अनुकूल वातावरण बना के रखना ताकि जो यहां एक बार आएगा फिर से वापस कभी ना भटक जाए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसके लिए बहुत सारे सेवाओं की जरूरत है, एक अनुकूल वातावरण बनाने की जरूरत है, यह हमारा कर्तव्य है। और यही सचमुच में प्रभुपाद के प्रति हमारा प्रेम, हमारी सेवा, और इस जिसके द्वारा हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं, ये महाप्रभु की कृपा है। तो ये हमारे गौर पूर्णिमा के लिए यही हमारी भावना होनी चाहिए, जैसे प्रभुपाद ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है पर मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मुझे आप उपयोग कीजिए, उसके लिए जो जरूरी आप कीजिए, पर कृपया मुझे आपके नाचाओ नाचाओ प्रभु आपके इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो भी जरूरत है वो मेरे द्वारा करवाइए, यश आपकी है। कि ऐसे नालायक एक निमित्त, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट, साधन, एक नालायक जैसा साधन है, जैसा अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला रहता है, एक थर्ड क्लास इंस्ट्रूमेंट भी दे दो। हमारे गोपाल्स गार्डन में एक अमेरिका के बहुत बड़े फेमस 1970s के बहुत बड़े सिंगर, वो जब गाते थे तो 60,000 लोग आते थे, वो आए थे, गिटार प्लेयर है, बहुत अच्छा गाते वो, तो एक लड़के ने अपना घर का गिटार लाके दिया उन्हें, वो तो इलेक्ट्रिक गिटार होता है, वो तो लाखों रुपए का होता है, उन्हें एकदम ऐसे सिंपल गिटार लाके दिया। वो बोले मैं कभी देखा ही नहीं ऐसा गिटार, पर एक बार जब बजाना शुरू किए ऐसा लग रहा था वो इलेक्ट्रिक गिटार, उसमें कोई अंतर नहीं। ये गिटार की महिमा नहीं है, उस व्यक्ति की महिमा है, जो कैसा भी थर्ड क्लास गिटार दे दो पर कलाकार वो बजा सकता है। इसी तरह से हम वो थर्ड क्लास गिटार जैसे हैं, पर भगवान या श्रील प्रभुपाद ऐसे कलाकार व्यक्ति हैं जो हम जैसे युक्तों को भी किसी तरह से बजा के उपयोग करके लोग बोलेंगे क्या गिटार है, क्या गिटार है, कुछ भी नहीं है, वही गिटार है वो। बजाने वाले की कमाल है, ये थर्ड क्लास एक साधन को भी इतना सुंदर से बजाया, ये लोग बोलते हैं वाह क्या गाना क्या गिटार। निमित्त मात्र भव सव्य साची, तुम यश लो अर्जुन, क्योंकि मैं तो लड़ने वाला, मैं तो ऑलरेडी मैच फिक्सिंग हो गया है, तुम लड़ो तुम यश लो, मेरी इच्छा को पूर्ण करो। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री निताय गौरचंद्र की जय, श्रील निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल।